नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान हुर्मुज जल डमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर को बर्खास्त किया। एलिना रायबाकीना ने आर्याना सबालेंको को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन का सामना अलेक्जेंडर ज़वरेव से और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई न बर्दाश्त करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान हुर्मुज जल डमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। इसके अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा के अंदर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। इसके लागू हो जाने से जलमार्ग का दक्षिणी मार्ग बंद हो जाएगा। ये अमरीका की मांगों का सीधा विरोध है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जल डब्रू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। ईरान ने जलमार्ग के खुलने से पहले अमरीका के सामने शर्तें रखी हैं। उसने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये मार्ग बंद रहेगा। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान की सीमा से लगी शलाम चेह चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट।
सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा दल ने बताया कि अब तक बरामद शवों में से 104 की पहचान कर ली गई है और उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है। अभी लगभग 5130 लोग लापता हैं। सुरक्षा बल खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 13,700 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 339 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। AI कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई ने AI उद्योग के तेजी से हो रहे विकास को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को तकनीक के साथ तालमेल में समय लगेगा। श्री अमोदेई ने चेतावनी दी कि मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना AI 6 से 12 महीनों के भीतर एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। ये संभावित रूप से इंटरनेट पर कब्जा कर अन्य जोखिम भी पैदा कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर बर्खास्त किया। एलिना रायबकीना ने आर्यना साबालेंको को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।